यह प्रवचन चैतन्य संगी प्रभु के द्वारा मीरा रोड राधा गिरधारी मंदिर 14 अक्टूबर 2012
श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद
15वां अध्याय 23वां श्लोक।
लड़ने के लिए भेजा
अस्ति
अस्ति
हाथी रथ
रथ
अश्व
अश्व
घोड़े
घोड़े
पति
भी
पैदल सेना समेत
पैदल सेना समेत
गदा
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 असी
असी
तलवार
तलवार
वाणा
वाणा
वाणा दृष्टि
दृष्टि
दृष्टि नामक
ऋषि नामक औजार
सतग्नि
सतग्नि
सतग्नि नाम
सतग्नि नाम
शक्ति
शक्ति
तथा शक्ति नाम
तथा शक्ति नाम कथिया
अक्षोहिणी
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 सप्तदश सप्तदश
सत्रह
सत्रह
अतिभीषणा
अतिभीषणा
अत्यंत भयानक
अत्यंत भयानक
ता सबको
सबको
रामः
रामः
परशुरामः
परशुरामः
एकः अकेले
अकेले
भगवान्
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 अशुदया अशुदया
परशुराम को देखते ही कार्तवीर्य अर्जुन डर गया और उसने तुरंत ही उनसे युद्ध करने के लिए अनेक हाथी रथ घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे जो गदा तलवार वाण ऋषि शतघ्नि शक्ति आदि विविध हथियारों से युक्त थे और उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षोहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबका सफाया कर दिया। बढ़िया सुंदर लिखे हुए तात्पर्य है, अक्षोहिणी शब्द 21,870 रथ और उतने ही 21,870 हाथी भी होते हैं। एक अक्षोहिणी सेना में कितने लोग होते हैं, कितने सैनिक होते हैं, तो गणना कर, दिल्ली से भगत लोग आए हुए हैं, वहाँ पे जितेंद्र प्रभु रहते, उनको बड़े ज्ञान है इस विषय में, महाभारत पूरा पी रखे हैं जितेंद्र प्रभु जी। एक अक्षोहिणी सेना में 21,870 रथ तथा उतने ही हाथी भी होते हैं और 109,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 घुड़सवार सैन्य भी हुआ है और इसका सही सही वर्णन महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में दिया गया है। एको रथो गजश्चैकः नराः पञ्चपदातयः त्रयश्चतुरगाश्चैज्ञैः पतिरित्यभिधीयते पतिं तो त्रिगुणात् एतां विदुः सेनमुखं बुधः त्रिणी सेनामुखान्येको गुल्म इत्याभिधीयते त्रयो गुल्मा गुणो नाम बाहिनी तो गणात्रयः श्रुतास्ति स्त्रस्त्रो वहिन्यः पृतते पृतनेति विचक्षणैः चमुस्तो पुतनास्ति स्त्र स्त्रवस्त्रे स्त्रस्त्वनीकिति निकिनि अनेकिनी दश गुणम् आहुरु अक्षोहिणी बुधाः अक्षुहिण्यस्तु संख्याता स्थानं द्विजा शतम्मा संख्यागणे ततत्वैज्ञैः सहस्राण्ये कविं सन्ति शतान्यापुरी चाष्टौ च भूयोस्तथा च सप्तति गजानां तु परिमाणं तावदेवात्र निर्दिशेत् ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि तथा नव नराणामधि पञ्चाशच्छन् स्थानि त्रीणि च नभा पञ्चषष्टिसहस्राणि तथा स्वानं शतानि च दशोत्तराणि षट् चाहुर्यथावत् अभिसङ्ख्यया एतामक्षहुणिः प्राहुः संख्यातत्वविदो जनाः। ज्ञातों का कहना है एक रथ एक हाथी पांच पैदल सैनिक तथा तीन घोड़े मिलकर एक पति कहलाते हैं। चतुर व्यक्ति यह भी जानते हैं कि ऐसे तीन पति का एक सेनामुख होता है और तीन सेनामुख मिलकर एक गुल्म बनाते हैं। तीन गुल्म मिलकर एक गण एवं तीन गण मिलकर एक वाहिनी कहलाते हैं और विद्वान लोग तीन वाहिनियों को एक पुतना तीन पुतनाओं को एक चमू तीन चमू को एक अनिकी कहते हैं और ऐसी दस अनिकियों से एक अक्षोहिणी बनती है। हे द्विज एक अक्षोहिणी में रथों की संख्या 21,870 होती है और हाथियों की संख्या भी इतनी ही होती है। पैदल सैनिक 109,350 है और घोड़े की संख्या 65,610 है। यह अक्षोहिणी कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वाहा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरद्विषे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवै वैदेहसाङ्गपदक् क्रम उपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्ति तदवतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरोभिर्निर्माय सेते यदमूसुपुरुषं भुङ्क्ते गुणांशो रसषोडशात्मकः सोलं कृषिष्ठ भगवान् वचांसि मे ध्येयं सदा परिभवघ्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्च नितं शरण्यं भृत्यारतिहन प्रणतपाल भवाधिपोतं
वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वंचे विभूषितकरार नवनीरदाभात्, पीताम्बराद अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठद्, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानामि। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम के। खैर कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि जो आपके सामने वे है अयोग्य प्राणी है, परंतु संत की कृपा, गुरु की कृपा और ऐसे आचार्यों की आशीर्वाद जब होता है, ग्रंथ भगवान की भी जब कृपा होती है, तब व्यक्ति बोलने में सक्षम होता है। हम बस कृपा विलासी है आप सभी वैष्णव वैष्णवियों के, आपके आशीर्वाद से कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जो कुछ कहेंगे, जो चर्चा करेंगे, त्रुटियां बहुत रहेगी, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोग पहचानते इस चैतन्य दास को जानते हैं, 2000 में सीहा से सब जानते हैं कि यहाँ पे हम रह रहे थे। अब कुछ वर्ष हो गया ब्रजधाम में रहते हैं। तो ये जो भी अच्छे शब्द रहेगा आप लोग स्वीकार करेंगे, जो कमी त्रुटि होगी आप वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, माताएं और प्रभु जी अब क्षमा कर देंगे हमें। तो ये बड़े सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंद में, भगवान परशुराम जी के योद्धा अवतार। परशुराम भगवान जी आप सब जानते हैं, दश अवतार स्तोत्र गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, छठे अवतार है। उनके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। तो बड़ा मनोहर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम की। यह पिछले कई दिनों से हम श्रवण करते आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा वीर का, आप वीर के नाम आप लोगों ने सुना क्लास में, जिनका नाम है संक्षिप्त में सुनना बहुत आवश्यक है, हम समझते हैं। तो कहा भी गया ऊपर से आदेश वही है पूज्य प्रभु जी के। कहते हैं एक बहुत बड़ा वीर था जिनका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु अर्जुन कहते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन यानी कि उनके पास 1000 हाथ थे, 1000 हाथ था। अब 2 हाथ वाले कितना घमंड करता है, जिसके पास 1000 हाथ न जाने वो कितना, तो सीधा पैजामा से बाहर रहता होगा। हुआ यही कार्तवीर्य अर्जुन ने किया क्या, एक दिन महेश्वतीपुरी में इसका राज्य था,
हम लोग वहां पर गए थे 15 दिन पहले। तो महेश्वरपुरी में उनका राज्य है, वहां पे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में एक बार वो जल विहार कर रहा था अपने पत्नियों के समेत। तो जब जल में स्नान कर रहा था यह कार्तवीर्य अर्जुन, और आगे रावण का सिर लगा हुआ था, लंकापति महाराज रावण दशानन। महाराज एक दूसरे से कोई कमी नहीं थे, एक का 10 खोपड़ी था तो एक का 1000 हाथ था, और वो भी हमेशा पैदावा से बाहर रहता था। रावण कितना बड़ा भयंकर गलती किया उन्होंने, हमारे माता सीता के ऊपर गलत दृष्टि डाल दिया। उन्होंने भगवान श्री राम के अर्धायन को चुरा लिया था कपट से। और यहां पर कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना वीर हूं। सभी पतियां चाहते हैं कि अपने पति के पत्नी के सामने बस अपना वीरता होनी चाहिए। भैया दुनिया में व्यक्ति सब जगह जीत जाता है परंतु पत्नी के पास घुटना टेक देता, ये भक्त का स्वभाव नहीं होना चाहिए। पक्का गृहस्थ तो वो भैया जो सब जगह जीत करके ऊपर सिर करके चले, ना कि पत्नी के पास अपने भोड़ी को नीचे झुका दे दिया, तब तो मरना ही पड़ेगा। दशरथ जी को मरना पड़ा। दशरथ जी भैया पूरी दुनिया में सब जगह विजय प्राप्त कर लिए थे, इतने बड़े वीर थे, पराक्रमी थे। महाराज दशरथ को बुलाया जाता था स्वर्ग में। वारे वाह, ऐसा कोई राजा आपने सुना नहीं होगा जो स्वर्ग में जाकर के देवताओं को मदद किया है, कुछ और ऐसे, परंतु दशरथ महाराज एक थे सूर्यवंशी राजा, सब जगह विजय प्राप्त कर चुके थे महाराज दशरथ। अयोध्या में उनके एक से एक वैभव था, एक से एक सेवक था, इतने सब कुछ विजय प्राप्त करके लाए थे। तो वही दशरथ दुनिया में सभी राजाओं को अपने चरणों में झुका दिए, परंतु स्वयं अपने पत्नी के पास झुक गए। कई कई जब को भवन में चली गई थी, तो दशरथ जी जब जा रहे थे को भवन की ओर, तो आपने मानस सुना होगा, रामायण पढ़ा होगा, तो क्या वर्णन आता है, दशरथ महाराज के पैर कांप रहा था, दशरथ महाराज भयभीत हो रहे थे, न जाने कई कई क्यों को भवन में चले गए। जाओ पता चलेगा क्यों ये को भवन में गई। महाराज पत्नी से इतना भय, इसलिए तो आजकल के पत्नियां सिर पर विसर्जन कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये हम नहीं कहते कि पतियों को विद्रोह करना चाहिए पत्नियों से, नहीं, प्रेम तो करना चाहिए। जिस गृहस्थ जीवन में पति पत्नियों में प्रेम नहीं है बेकार है, उसे वन में जाकर के रहना चाहिए। आचार्य लोग कहते हैं क्या जीवन है अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं। भैया पति सवेरे सवेरे गया गधे घोड़े जैसा ऑफिस में ड्यूटी किया, शाम को आया तो पत्नी थोपड़ा यूं बड़ा करके मुंह लटका के बैठी हुई है, एक बार स्वागत भी नहीं कर ली, बताइए। या तो महारानी टांगे पसार करके पलंग पर लेटी होगी, और जब पिताजी बैल बजाएंगे तो कहेंगे बेटा जाके खोल दियो, बच्चा जाके खोलता है। आदर्श गृहस्थ जीवन का संस्कृति भागवत से प्राप्त होता है। नारद युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देते हैं, या कि पत्नी का कुछ धर्म होता है, पति को गेट तक विदा करना चाहिए, जल टिफिन लेकर के गेट तक विदा करना चाहिए, और जब पतिदेव वापिस आते बच्चा गेट नहीं खुलेगा, कान खोल के सुनिए मैया आप स्वयं गेट खोलेंगे। बच्चा गेट खोलेंगे तो एक धीरे 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 आपसे मन हटने लगेगा। आज ब्याह तो कर लेते भैया, परंतु कोई बढ़िया संपर्क नहीं रखते लोग, न जाने नपुंसक लोग, बदमाश लोग कितने कितने पत्नियां बाहर बना करके रखे हैं, जिसको वर्जित किया है श्री प्रभुपाद ने संस्था में। या पत्नियां पति जाने के बाद में न जाने घर में क्या करती है, टेलीविजन खोल के तुम्हारा दुनिया को देख लेती है, बहुत बकवास चीज है। तो वैसे पत्नियों के चाहता है, एक पुरुष चाहता है कि मैं अपनी पति पत्नी के सामने अपना बड़ापन दिखा दूं। एक बड़े संत थे यहां पे रामानंद प्रभु, जुहू मंदिर में रहते थे ब्रह्मचारी, अब ब्रजधाम में निवास करते हैं। रामानंद प्रभु कथा कह रहे थे, एक बार बॉम्बे में ही सफर के समय ट्रेन में एक परदेशी व्यक्ति अपने सब परिवार के समेत आया हुआ था, परिवार के साथ आया हुआ था। उसके पास उसकी पत्नी थी और एक बड़ी बच्ची थी, एक छोटा सा मुन्ना बाबू हाथ पर था। तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, सबको बताया कि इस समय अगर आप मीरा रोड स्टेशन जाएंगे तो चर्च गेट पहुंचने में लगा नानी की याद आ जाएगी, महाराज चर्च गेट पहुंचेंगे, ठोस करके बढ़िया से डाइजेस्ट करवा देंगे, इतनी बढ़िया गैदरिंग्स होता है। तो ऐसे यहाँ से स्टेशन से कहीं से चढ़ा तो एक साधु उसमें बैठा हुआ था, वो गृहस्थ के जो बच्चा था वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ही कर दिया, सुसु कर दिया, तो भैया बगल में जो बैठा था उसकी कपड़ा गिली होने लगी और उन्होंने कहा कि ये क्या, देखा तो देखा कि गंगा की धार छूट रहा है वहां से मुन्ना बाबू जी से। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उस व्यक्ति से लड़ाई किया, दो शब्द कहा, बोले कि भैया तू अगर अपने बाल बच्चों को लेकर के यात्रा करना चाहता तो तुम्हें कम से कम पर्सनल गाड़ी रिजर्व करना चाहिए। वो भी थोड़ा सा दिमाग पे कीड़ा चढ़ गया उसका, वो भी गाड़ी क्या समझता है कि गाड़ी तेरे बाप का चलता है क्या, गाड़ी तो सबकी होती है भाई, सरकार ने चला तेरे लिए मेरे लिए, और हमने गया बस बच्चा सुसु कर दिया तो क्या हो गया। तो दोनों में थोड़ा सा लड़ाई हो गया और उतने में इसने यहाँ का जो व्यक्ति था एक तमाचा खींच करके उस व्यक्ति को मार दिया गृहस्थ। अब उसने क्या कहा, मुझे मार दिया तो मेरे पत्नी के मार के दिखा एक बार, तूने मुझे मार दिया जरा मेरी पत्नी को मार के दिखा दे। मार तो खा लिया अब क्या करेगा, तो पत्नी को भी कस दी महाराज, महाराज दे धम से उसके फोपड़े पर मार दिया। जब पत्नी को कस दिया उसने कहा मेरी बड़ी बच्ची को मार के दिखाइयो। अले भाई उसको व्यक्ति के कनपट्टी पर देख दिया। अब उसने अंत में कहा कि सबको मार दिया तो क्या समझता है मुझे, मेरे मुन्ने को मार के दिखा, मैं बताता हूं। अब उसको भी उन्होंने एक दिया। तो यार साधु बैठा हुआ था, जब दूर में दूसरे स्टेशन पर उतरे तो साधु को कहीं और जाना था, वो भी उतर गया इस असमंजस को देख करके। अब तो बात क्या है, ये स्वयं मार खाया और दूसरों को भी मार खिला दिया, क्या बात है। तो उसे पूछा गया, उस व्यक्ति से साधु ने पूछा कि भैया तुम तो मार खाया, अपने पत्नी को बच्चे को बाबू को क्यों मार खिलवाया। तो उसने कहा कि इतना नहीं समझते महात्मा जी, भैया पत्नी के सामने छोटा कौन बनना चाहेगा, अब हम तमाचा खा के जाएंगे राजस्थान में, वो गाएगी मेरे पति महाराज को मार खा के आया, तो इसलिए उसके कानपट्टी पर अच्छा बच्चे को ना। ये बच्चे आजकल के बहुत तेज होते हैं, ये तो पहले ही बोले देंगे, न्यूज खोल देंगे, पिता मैया दोनों मार खाए। तो इसलिए उसके गणपति पर है। या दुनिया में सभी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ बनूं। तो वैसे ही महाश्वेतपुरी के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ये दिखाना चाहता था अपनी पत्नियों को कि मेरे पास कितनी शक्ति है। आखिर शक्ति था भैया उसके पास, ऐसे वैसे नहीं कि हमारे जैसे लुल्लू अगर चढ़ पड़े महाराज हम चांद तोड़े लाएंगे तेरे लिए बबुल, महाराज चांद तो नहीं बबुल के डंडा न टूटे, और चांद तोड़ने की बात ये करता है कि तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बबुल के डंडा न टूटे महाराज चांद तोड़ने की बात तो करता है। परंतु कार्तवीर्य अर्जुन के पास इतना शक्ति था, इतना बल था उसके अंदर, उसके पास तो सहस्त्र भुजाएं था, हजार हाथे थे और विशाल पर्वत के समान हो जाता था जब चाहे, बड़े बहुत शक्ति था उसके अंदर। गंधमार्दन जैसे पर्वत को मुष्टिका से प्रहार करता था आटे की तरह चुरमार है कोई ऐसा, 10 किलो के पत्थर खोपड़ी पर रख दे तो महाराज प्रभु जी उतारो अब नहीं होगा नहीं चलेगा, 5 मिनट मंदिर में झाड़ू मारे वो और वो तो इतने शक्ति था उसके पास, उसके शक्ति का वर्णन करते हैं कार्तवीर्य अर्जुन का। एक तो डायरेक्ट भगवान जी की आशीर्वाद था, भगवान दत्तात्रेय जी उनकी आशीर्वाद था उनके ऊपर, ये बहुत संत सेवा करते थे भैया, संत सेवा की फल क्या होती है देखिए, या एक से एक कथाएं हैं पुराणों के अंदर, संत सेवा गो सेवा दोनों की फल क्या होता है। भैया हम आपको कह देते हैं, गोविंद के सेवा करने से जो चीज नहीं मिलेगा, अगर आप गो सेवा करते हैं, संत सेवा करते वो चीज मिलेगा। गोविंद, हमें गोविंद का भजन करने पर ठाकुर न मिले ये हो सकता है, परंतु संत के सेवा करके, परमहंसों के सेवा करके, गो माता के सेवा करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि कन्हैया हमसे दूर रहे, ठाकुर जी आना पड़ेगा। क्योंकि संत और गो माता इस कलयुग के चलता फिरता ईश्वर का स्वरूप है, कथा सुनाने की समय नहीं है, चलता फिरता गोविंद का दूसरा स्वरूप है संत और गो माता, इसलिए दोनों के प्रति त्रुटि कभी नहीं करना चीज बन में अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा भैया। तो ये संत का सेवा किया करते थे कार्तवीर्य अर्जुन, तो भगवान दत्तात्रेय जी की भी बहुत सेवा किया उन्होंने। अब दत्तात्रेय भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आखिर भगवान से करुणामयी दुनिया में कौन है भैया, भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, वास्तव में सच है, जिन जिनको गोविंद ने दिया है, जिन जिन ने हमारे ठाकुर का सुमिरन किया, जिन जिन ने दुनिया में भगवान के नाम जपा, जिन जिन ने दुनिया में संतों का सेवा किया, जिन जिन ने दुनिया में गीता भागवत अध्ययन किया, जिन जिन ने दुनिया में अपने आप को गोविंद का माना, तो गोविंद ने उसको क्या नहीं दिया भैया। आप एक ऐसा व्यक्ति के नाम हमें बता सकते हैं जो गोविंद का भजन करके निराश्री बना रहा, गोविंद का भजन करके कोई व्यक्ति निराश्री नहीं होता भैया। सुदामा को भगवान ने तीनों लोगों का वैभव दिया, द्रौपदी को साड़ी की फैक्ट्री खोल दी, साड़ी थी कि नारी, नारी थी कि साड़ी, साड़ी के बीच नारी या नारी के बीच साड़ी पता नहीं चला, मीरा को पल पल में गोविंद ने बचाया, सबरी कथा सबने सुना है, सबको भगवान ने कितनी वैभव कितने सुख दिया, महाराज ध्रुव को भगवान ने क्या दिया, महाराज ध्रुव ने मना कर दिए, काचन विचिनवन पिदिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, सरकार आप मुझे दिव्य अमूल्य रत्न मिल गए हो, इसलिए परम न याचे, कांच की टुकड़ा क्या करना है, बाप था पूरी विश्व के साम्राज्य के राजा, अब उनसे 10,000 गुना बढ़कर के साम्राज्य चाहिए था, इसीलिए स्थाना अभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, स्थान की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर के मधुबन में वृंदावन में तपस्या करने गए। गोविंद जब प्रकट हुए, ध्रुव महाराज को बोले बेटा मांगो क्या चाहिए, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। महाराज ध्रुव ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, अरे प्रभु आप मुझे प्राप्त हो गए, त्रिलोकीनाथ आप मुझे मिल गए, जो तीनों लोकों में प्राप्त होना गभीरम रहंसा, माता कुंती कहती है गहरा से गहरा में आप प्रवेश करो, तीनों लोकों में ढूंढ लो, कहीं गोविंद न मिलते भैया, वो आप मुझे प्राप्त हो गए। मुनिंद्र गुह्यम, जो हजारों हजारों वर्षों से मुनि ऋषि तपस्या करते हैं आपकी झलक भर दर्शन पाने के लिए, आप उन्हें भी दुर्लभ नहीं है, आप प्रत्यक्ष गोविंद मेरे सामने खड़े हो, इसलिए मुझे क्या चाहिए प्रभु, आप मिल गए, स्वामी कृतार्थ अस्मि, हे सरकार में कृत कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया, अस्मि वरम न याचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। परंतु भगवान ने कहा कि बेटा नहीं दुनिया तो हम ऐसे ही गाली देता, तू और भी एक गाली देना चाहता है क्या, तेरे कारण लोग और गाली देंगे कि अरे सब कृष्ण के भजन करने चलते हैं और ये सबका दिल को मोड़ देता है, हृदय साफ कर देता है और वैसे समझा उजा करके वापिस कर देना भाई, तो तुझे तुझे जो चाहिए तू बोल दे। दुनिया कहता कि भगवान कृष्ण के भजन करने से गरीब हो जाता, भैया एक उदाहरण हमें आप बता दीजिए। 10 दिन पहले हम चित्रकूट पर वहां पर थे, तो आपको बता एक भगत आकर कहने लगा कि प्रभु जी ये बताओ कि कृष्ण का भजन करने से कंगाल क्यों होता, मुझे हंसी आ रहा। अरे भैया कृष्ण के भजन करके कंगाल कभी कोई होता है, भगवान उसकी भौतिक संपत्ति को हरते हैं और वो चीज देते हैं, भगवान कहते आमी विज्ञ से यज्ञ विषय के न दीव स्व चरण अमृत दिया विषय भुलाई। भगवान वो वस्तु देते हैं जो आप करोड़ों करोड़ों रुपया लगा कर कि वो चीज नहीं खरीद सकते, वो दिव्य सुख आनंद आपको प्रदान करेंगे, हमें प्रदान करेंगे भक्ति करने से। तो भगवान छीनते नहीं है, भगवान देते हैं भैया, कहीं ना छीने किसी से। तो ध्रुव को भगवान जी ने दिया 36,000 वर्ष दिव्य राज्य कर रहे महाराज ध्रुव आज भी। प्रहलाद को भगवान ने पल पल पर बचाया, तो भगवान ने दिया भैया जहां कहां देखो दिया, पांडवों को दिया, सबको दिया, जो भी उनके शरणागत हुआ भगवान ने दिया। रावण ने 10 मस्तक काट करके यज्ञ में आहुति चढ़ाया, तब शंकर जी सोई शिव संपत्ति शिवराम ने दिन दिह दशमाथ, वो संपत्ति रावण को भगवान शंकर जी ने तब प्रदान किया विश्वनाथ जी ने जब उन्होंने समर्पण किया। तब शंकर जी प्रभु बेटा दसवा काटने की जरूरी नहीं, बदल ले तुझे क्या चाहिए, स्वर्ण लंका चाहिए, नगरी चाहिए महाराज, मीरा रोड सुनने की हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे लिए मीरा रोड की सोना है भैया, या भी कोई आए तो ठाकुर जी से अगर कुछ मांगता है तो उसको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान तो चाहते भी आओ और कुछ मांग के ले जाओ, क्योंकि अगर कुछ मांगोगे नहीं तो आपके दास बना रहेंगे, आपके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा उनको, आप जब चाहो उन्हें बांध दोगे, जब चाहो तब डांट दोगे, ये सब हिसाब किताब होगी। इसलिए ठाकुर जी कहते कुछ मांगना है तो मांग कर भी चला जाओ। तो बुद्धिमान तो वो जो मांगता नहीं है, जो कहता कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे कितवे न धनम न जन्म, कुछ नहीं मांगता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति विभक्ति तुम्हारे मुझे प्राप्ति हो, बस यही चाहता, इसको कहते भक्ति, अन्य विलासित शून्यम। तो ऐसे भगवान सबको देते हैं, तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी ने कार्तवीर्य अर्जुन को दिया था, 1,000 हाथ दिए थे प्रसन्न होकर, तुमने हमारा सेवा किया इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जैसे पृथ्वी महाराज को शरीर में कर्ण कर्ण प्राप्त हुआ था, कर्ण उनके शरीर में नहीं हुआ था, जैसे इंद्र के शरीर में केवल आंखें आंखें हो गया था किसी के श्राप से, ऐसे पृथ्वी महाराज के कान कान नहीं बना था शरीर में, इंद्र का शरीर भर आंखें आंखें, मैं देखने भक्का लगता है वो, परंतु महाराज पृथ्वी के कान का पावर बढ़ा दिया ठाकुर ने। वो कर्ण इसीलिए मांगे थे कि प्रभु मुझे करोड़ों कान बना दीजिए, करोड़ों कान का पावर मेरे कर्ण में डाल दीजिए ताकि मैं आपकी कथा सुनूं भैया। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब ऐसे यहां पे भगवान दत्तात्रेय जी ने उन्हें 1,000 हाथ दिए थे। तो एक दिन नर्मदा नदी में वो विहार कर रहा था, स्नान कर रहा था, पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, और उस समय वो दिखाना चाहता था अपने पत्नियों को, अरे पुल बनाने के लिए सीमेंट बालू रड छड़ मंगाने की जरूरत नहीं, जैसे हर्षगोविंद प्रभु मंगा मंगा करके बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, जरूरत नहीं है ये सब चीजों की मंगाने के लिए, देखो बात हाथ बिछा दिया महाराज पुल बने, बारे वाह मानना पड़ेगा। ये बात आप कहानी सुन रही है ऐसा मत सोचिए, एक दिन ऐसा घटना घटी थी धरती पर, ये सोचिए आप विचार कर, जो स्थान भी आज है, अब रियलाइजेशन कीजिए कि अंदर 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 से अनुभव कीजिए कि कैसी बात होगी, भैया हाथ में इतनी विशाल नदी को रोक दिया तो बंध बन गया, पुल बन गया, एक बूंद पानी आगे नहीं गया, क्या शक्ति होगा, क्या करामती होगा उस सहस्त्रबाहु का। अब आगे रावण का शिविर नदी के तट पर लगा हुआ था, वो भी आया था वहां से लंका से अपने पत्नियों के साथ। जब रावण के शिव जब इन्होंने बंध बना लिया तो पानी सब पानी तो नर्मदा तो बहती रहती है, सबने देखा होगा जो गए हैं, नर्मदा बहती रहती है गंगा जी की तरह, वो तालाब नहीं है, बहती रहती है। तो ऐसे जब उन्होंने रोक दिया तो पानी सब ऊपर आ गए, जब ऊपर आ गए तो ऊपर ऊपर से पानी बहने लगा, तो ऊपर आगे चलकर कुछ दूर पे रावण का शिविर लगा हुआ था, जैसे मिलिट्री लोग टेंट लगाते जगह जगह, ऐसे शिविर लगा करके रावण बैठा हुआ था और रावण के शिविर महाराज बहने लगा। और रावण को बड़ा गुस्सा आया, ये किसने किया ये हरकत, पानी ऊपर कैसे आया। दशानन गए देखने के लिए, अब जब देखे कि यहाँ पे एक आदमी ऐसे खड़े होकर के नदी में ऐसे पानी को रोक दिया मैया। अब रावण को इस बात की आश्चर्य नहीं हो रहा था, खैर वो भी शक्तिशाली था भैया, साक्षात काल को अपने पैर के नीचे चटाई बना के रखा था, तो वो कैसे डरेगा ऐसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति से। रावण के लिए वो कार्तिक जी कुछ नहीं लग रहा था, परंतु उनको नहीं पता था कि मेरे दादा लगता ही है शक्ति के मामले में। तो उन्होंने कार्तिकीय को वहां जाकर के बोलने लगा, कुछ गाली इत्यादि करने लगा, सबने कथा सुना, परंतु कार्तिकीय नहीं सुन रहे थे। भैया अगर सियार सिंह के सामने खड़े होकर वो करने लगे तो सिंह को कोई फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा, ये भी हमने देखा है डायरेक्ट ऐसे सियार सिंह को भोगते समय अफ्रीका में देखा। अभी 20 दिन पहले हमने वहां पर था अफ्रीका में, 20 दिन पहले हम लोग गए थे देखने के लिए गुड़ाकेश प्रभु जी के सामने मसाई मारा। वैसे सियार जब देखते सिंह आ रहा है, चित्ता आ रहा है, तो झुंड बनाकर के दूर से भोगते रहते, और एक बार जब चित्ता देखता तो सबकी पूछ नीचे हो जाता और भागने लगते, जब वो आगे चलने लगता तो पीछे पीछे सियार फिर दौड़ते, ये दशा है। तो सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे जैसे सियार भोगता है सिंह अपना कार्य करे जा रहा है, तो वैसे ही कार्तिकेय अर्जुन अपना नहा रहा था, मजा ले रहा था भैया दुनिया की, और ऊपर से रावण आकर हाव 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 कर रहा था। अब इसको इतना चिढ़ आया कि डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो उसने तुरंत उसके गर्दन को पकड़ा और पकड़ करके बांध दिया और ले गया महिष्मतिपुरी। जैसे बंदरों को बांध करके बंदर नचाने वाला नचाता, खींचते हुए उस 10 मस्तक वाले रावण को ले गया दशानन ने। वो भी कैसे पकड़ा था जानते हैं, नासो ने आने हाथ बाकी था, एक हाथ से रावण के गर्दन ऊपर पकड़ के ऊपर कर दिया जमीन से, नासो ने आने हाथ और बाकी था, यूज नहीं किया था अगर न्यायालय में हाथ यूज करता एक मारता खोपड़ी पे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाता भैया। तो मारा नहीं, हाव हाव कर रहा था, बोला कि बंदर क्या हाव हाव कर रहा है, तो उसके गर्दन पकड़ करके ऊपर कर लिया। और रावण तो ऊपर परेशान महसूस करने लगा, बांध दिया बदमाश यहां करके, वो फालतू के बकवास कर रहा था, बांध करके ले गया अपने नगरी में, नाना जी ने बचाया तब बच गया, नहीं तो वो उसी दिन उसके काम खत्म हो जाता। तब ऐसे यही महेश्वरतिपुरी के राजा कार्तिकेय अर्जुन बताते हैं, एक दिन वह महेश्वरतिपुरी के राजा कार्तिकेय अर्जुन ने स एकदा तुम मृगयाम विचरण विजने बने। एक दिन ये राजा अपने सैनिकों के साथ वन में विचरण कर रहा था, मृगयाम विचरण विजने बने, मृगया करने के लिए वन में गए हुए थे। भैया पहले के जमाने में राजा लोग सब मृगया करते थे, इसी में सबकी खत्म होता था जीवन। दशरथ महाराज ने मृगया करने गए थे, उन्होंने शब्द बाण मार दिए, तो वो श्रवण कुमार थे, कोई हाथी नहीं था। पितामह भीष्म ने मृगया करने गए थे, उन्होंने सर्प को उठा करके फेंक दिया, बबुल के पेड़ में गिर गया, इसलिए 58 दिन तक इनको सरसया पर लेटना पड़ा। पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता शरीर त्याग दिए, तो यही चीज दशरथ महाराज को लग गया, तुम भी पुत्र वियोग में मरेंगे, हुआ राम के वियोग में शरीर त्याग। परीक्षित महाराज मिर्या करने गए थे, जल के कारण पिपासा थे, प्यासा थे, तो सैनिक ऋषि के आश्रम पर गए और उन्हें जल की याचना किए। सैनिक ऋषि जल नहीं पिला पाए क्योंकि वो ध्यान मग्न थे, परम ब्रह्म के साथ लीन थे। तो वास जैसे आ रहे थे आश्रम से बाहर निकले, मृतक सर्प दिखने लगा। अब उनको लगा कि ऋषि डोंग कर रहा है। राजा आया दरबार पर, भैया और इन्होंने पानी नहीं दिया, मांगने पर भी इतना भारी तिरस्कार हमारे। राजा ने तुरंत उनके गले पर, तो उसी में राजा का भी कल्याण हो गया। तो ये सब वन में पहले जाया करते थे मृगया करने। महाराज पांडु ने वन में मृगया करने गए थे, किंदी ऋषि और उसके पत्नी पशु बन करके समागम कर रहे थे और उन्होंने बाण मारा तो दोनों की कल्याण हो गया। ऋषि किंदिम ने श्राप दे दिया, तुम भी जब सहवास की इच्छा करोगे तुम्हारे भी कल्याण। तो अर्जुन के जन्मदिन बर्थडे बनाया जा रहा था, उस दिन उनके मन में कामना वासना जग गई, तत्क्षण इनकी मृत्यु हो गई, माद्री साथ में सती हो गई। तो पहले के जमाने में सबरी जितने राजा रहते थे सबके सब जाते थे वन में मृगया करने, क्योंकि वन में जो हिंसक प्राणी है उन्हें मारना ये ऊपर से आदेश है, राजाओं का ये धर्म दिया है। तो ऐसे एकदा तू मृगयाम विचरण विजने बने भयंकर वन के अंदर वह प्रवेश कर गए। जब भयंकर वन के अंदर ये गए, मृगया करते करते बहुत थकान सा महसूस करने लगे और बहुत भूख प्यास ने सताने लगा। ऐसे ही होता भैया, जब जीवन में कोई घटना घटनी होती ना, अचानक सा घटता है, व्यक्ति सोचता नहीं कि अरे मेरा इतनी करोड़ों का प्रॉपर्टी कैसे लॉस हो गया, पता नहीं चलता। वो सोचा भी नहीं होगा उसकी कंपनी में आग लग जाती, सोचा नहीं होगा महाराज कंपनी इतना बड़ा बनाओ, बड़ा सा कंपनी बन जाता, कितने धन संपत्ति के मालिक बन जाता। ये जीवन में घटता है कभी कभार, ऐसा कैसे कैसे हो गया हमारे साथ, हम तो सोचा भी नहीं था, सोचा नहीं था बाबा बनू, कैसे बाबा बन गया, कुछ लोग ये सोचते हैं। तो ये जीवन में कभी कभार अचानक सी कोई घटना घटती है, तो वैसे ही ये भगवत इच्छा से होता है। ऐसे ही ये वन में जब विचरण कर रहे थे, मृगया करने गए थे, बड़े थकान सा महसूस कर रहे थे और उन्हें प्यास लगने लगा, भूख सताने लगा, तो ये जमदाग्नि उरुपाविशद जमदाग्नि के आश्रम पर गए। दूर से दृष्टिपात की कि देखे कि सामने कुटिया दिख रहा है के पास, तो चल पड़े महाराज वो जमदाग्नि के आश्रम था। जब जमदाग्नि के आश्रम पर गए तो ऋषि जमदाग्नि बड़े वैष्णव थे, बड़े संत थे, ऋषि थे, परमहंस थे। आखिर उनके पुत्र तो भगवान गोविंद स्वयं बने, शक्ति आवेश अवतार हुआ परशुराम जी, भगवान के छह अवतार होता है मुख्य रूप से, लीला अवतार, गुणावतार, मन्वंतर अवतार, युगावतार, शक्ति आवेश अवतार, पुरुषावतार, छह अवतार होता है। तो ये शक्ति आवेश अवतार था परशुराम जी के, इन्होंने उनके पुत्र के रूप में आए। कोई तुच्छ व्यक्ति होते तो उनके पुत्र के रूप में ठाकुर जी न आते। परशुराम और कोई नहीं है, हमारे गिरिधारी ही है, उन्हीं का ही अवतार है। तो ऐसे परशुराम जी उनके आश्रम पर ये गए, जमदाग्नि के आश्रम पर, और उनसे जाकर की याचना की, ऋषिवर हमें जल पिलाइए और कुछ भोजन की बंदोबस्त कीजिए। तो जमदाग्नि ऋषि को ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय दिए, क्योंकि ऋषि जमदाग्नि यज्ञ करते थे, बड़े धर्म परायण ऋषि थे, कुछ नालायक संतों की तरह नहीं, जैसे दुनिया में कुछ संत बन जाते खाद खाली सोएंगे महाराज, इसलिए संत बने हम, खाओ महाराज मठ में घड़िया की हुई है सोए आनंद लो महाराज, यही बन है संत बने हो। तो ये सोचो कि दुनिया के कल्याण कैसे होगा, अपनी दाना पानी का चिंता मत करो भैया, ये ठाकुर देंगे। दाना पानी की चिंता करना था तो भैया प्यार से डाल कंपनी में क्यों ना सर्विस किया, कहां रहूंगा क्या खाऊंगा इसकी भी विचार, तो कैसे महात्मा बना तूने, साधु क्यों बना, घर क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था घर, मंदिर में आकर भी कमाने की बिजनेस व्यापार सोच लेते, उसका से दो पैसा हो जाए, बोलो महाराज चुल्लू और पानी में डूब मर जाओ, ये भावना रखते हैं जो संत। तो वह ऐसे जैसे मुनि नहीं थे भैया, ऐसे जैसे संत नहीं थे, ऐसे संत थे बस केवल यज्ञ जप तप इत्यादि करते थे, दुनिया के कल्याण चाहते थे, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर के एक गाय प्रदान किए थे। जब चाहे कितने टीना घी चाहिए, पियो देसी घी, काओ घी निकलता था भैया, प्योर प्योर मिल्क। आज सब लिखा रहता है पॉलिथिन के ऊपर, थैली के ऊपर, प्योर खांडी दूध, महाराज उसमें प्योर मिलावट है, उसमें प्योर मिलावट है भैया, लिखा रहता कि देसी घी है, वो देसी घी अगर है तो लिखने की क्या जरूरत है। आजकल सब लोचा चलता है, इसीलिए तो लिखना पड़ रहा है भैया देसी घी है और अंदर प्योर रिफाइन है, रिफाइन अंदर यही है, कोई प्योर चीज नहीं मिलता। तो ये कामधेनु गाय उन्हें प्राप्त हुआ था, ये कामधेनु गाय से दूध दही निकालते थे, घी निकालते थे, उसे यज्ञ करते थे, ब्राह्मण वैष्णवों का सेवा किया करते थे। तो एकदा जब राजा विचरण बने, जमदाग्नि रूपाधिषद जमदाग्नि के आश्रम पर पहुंचे और उनसे ये अभिलाषा किए, तस्मी स नरदेवाय मुनिर हणम आरहत। जब राजा ने देखा, मुनि ने जब देखा कि हमारे आश्रम पर महाराज आए हुए, बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज बोलने से पहले स्वागत की तैयारी करने लग गए। भैया यही तो कि गृहस्थ का पहचान है, जब संत घर पर आता है, कोई अतिथि घर पर आता है, तो सबसे पहले बैठने के लिए उसे कहा जाए, ना कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी फाड़ दी मैया देख कर वो रास्ते से भाग गया अतिथि। पता नहीं कभी साधु जाते कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ अर्थ मांग करके लाने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए, और पता चलता साधु आया हमारा दूर से दरवाजा बंद कर देते, दूर से दरवाजा बंद कर देते हैं, या अपने पुत्र से कहते कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। राधा गोविंद महाराज एक बार दिल्ली में एक भगत के, भगत नहीं था वो, पहले तो भगत नहीं था, अब तो पूज्य महाराज श्री के शिष्य है, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, बड़े शिष्य है अब उनके, वो जो भगत नहीं थे उनके घर पर ये जाते थे लाइफ मेंबर बनाने। जब वो गए, तीन बार गए, तीनों बार वो मिला नहीं, और चौथी बार जब गए बेल बजाए, तो उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा, जाके कह दो पिताजी ने, पिताजी ने कहा कि कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। वो पुत्र को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, जब दरवाजा खुला देखा कि ब्रह्मचारी सन्यासी जी सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पिताजी ने कहा कि कहो तो घर पर पिताजी नहीं। कहा कि पिताजी ने कहा घर पर पिताजी नहीं है, और उतने में महाराज समझ गए कि ये देना नहीं चाहे तो पाखंड मचा रहा है, अब तो हमें यहाँ आएंगे नहीं, अब बेटा आप कह देना कि तेरे पिताजी नहीं, अब ठीक है वहां आएंगे नहीं, चले गए। बाप में बहुत बड़े महात्मा बने, बड़े साधु गृहस्थ साधु पूज्य महाराज के शिष्य। तब ऐसे कभी कभार लोग बड़े बड़े आंखें फाड़ करके देखते हैं, कोई सत्कार नहीं करते, जल के लिए नहीं पूछते, ऐसा अतिथियों के साथ नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, पहले दरवाजे पे लिखा रहता था, आज तो कुत्तों के प्रति सावधान लिखा रहता महाराज, कुत्ता कुत्तियां पाल करके घर पर रखे, उससे चुमते चाटते पता नहीं जाने क्या क्या कर, कोई शिष्टाचार सभ्यता है मनुष्य का, कुत्ते को पकड़ करके ऐसे चलते। तो ऐसे ये जमदाग्नि के आश्रम पर जब पहुंचे, तो ऋषि जमदाग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्वागत की तैयारी करने लगे। ऐसे ही भूखे प्यासे थे, जितने सैनिक थे सबको बढ़िया आसन प्रदान किए और सबके सामने बड़े सुंदर पात्र में बढ़िया बढ़िया देसी घी में तले हुए पूड़ी पकौड़े हलवे खीर आने लगा, एक से एक नैवेद्य सबके सामने परोसा गया। जमदाग्नि के आश्रम में बड़ा भंडारा फूड फल लाइफ चालू हो गया। तो जितने सैनिक थे राजा समेत सबके सब आनंद लिए खाए। अब खाने के बाद में राजा का बुद्धि प्रसाद से भ्रष्ट नहीं हुआ, राजा का बुद्धि थोड़ी सी ऐसी था, लालच आ गया उसको। तो जब लालच आया तो उसने क्या किया, लालच के मारे ये आदेश दिया, अपने सैनिकों से उन्होंने कहा अथराजन निर्याते राम, उन्होंने ये कहा हवीर धाने मृषे दर्पान नरान हंतुम चोदयत तेज महिष्मति न्यूनम सवत्साम क्रंदन की बलात् कल्पुजगमलोचन प्रभुजी ने बताया। उन्होंने जब खाया पिया मारा चले जाना चाहिए, कभी कभार इतनी लोभ हो जाता, इतनी लालच हो जाता लोगों को कि भाई खाया पिया ठीक नहीं, और कुछ चाहिए और चाहिए। लोभ ही दुख का कारण भैया, दुनिया में व्यक्ति बहुत लोभ करता है, जिसका मन संतोष नहीं है उसे तीनों लोगों के वैभव दे दिया जाए तब पर भी संतोष नहीं होगा। चाणक्य जी ने कहा क्या, गोधन रतन धन खान, गोधन गजधन और रतन धन खान, जो संतोष धन आवे सब धुरी समान। अगर उसे हाथी दे दिया जाए और गाय दे दिया जाए, स्वर्ण मंडित गो दे दिया जाए, घोड़े दे दिया जाए और जितने तीन लोग वैभव उसे प्रदान कर दिया जाए, अगर उसके हृदय संतोष नहीं है, हृदय में चाह और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लोभी प्रवृत्ति है, तब कहते उसे संतोष नहीं मिलेगा। संतोष तो अपने अंदर अपने आप को महसूस करना चाहिए, भगवान की भक्ति सेवा इत्यादि ये सब करके, परंतु ये प्रसाद खाने के बाद इनके मन में लालच पैदा हो गया हमें ये गाय ले जाना चाहिए, आखिरी ऋषि के पास क्या होगा इतना पैसे वाला वस्तु। और क्षण भर में इतना उन्होंने नैवेद्य बना लिया, दिखते देखते एकदम सुंदर सुंदर देसी घी में पकौड़ा पूरी और एक से एक सैंडविच, महाराज रसगुल्ला काला जामुन 250-300 रुपया किलो, ये कैसे बनवा लिया इतना जल्दी हजार सैनिकों के लिए। अरे इतना वैभवशाली इतने पैसे वाला वस्तु ये ऋषि के पास क्या होगा, ये गाय तो हमारे पर पता लगाया कि वस्तु सब कहां से निकलता है, कहां से ऋषि ने आयोजन किया, खैर खुद तो खाली पन करके बैठा हुआ है मृग खाल, तो इसके पास ही वैभव कहां से आ रहा है, संदेह होगा कि नहीं भैया, होगा ना। आप हमसे कहेंगे चैतन्य जी हमें 1 लाख दीजिए भैया हमारे पास, अब हम मानो आपको कहे 1-1.5 लाख ले जाओ जब चाहे तब दे देना, तब आप सोचो कि मेरी जोगिया के पास कहां से आया, इसके पास कहां से आया 1.5 लाख। तो खोल के साफ बात है, हम साफ बोल देते हैं, इस पता है सब कहेंगे कि गोपला किया होगा मंदिर से, कहेंगे यही कहेंगे सब, नहीं बोलते तो सामने सबके अंदर चलता है, अरे हम जानते वो भगत के साथ है इसीलिए तो चला गया, हम जानते वो लोचा करता है मंदिर पैसा मार, यही प्रश्न कहते हैं लोग, तो सोचेंगे ना कि इतनी पैसा इसके पास कहां से आया। तो वैसे वो ऋषि के पास जब खाए पिए बढ़िया से स्वागत हुआ राजा के, तब राजा सोचने लगे इतना वैभव इस जोगिया के पास कहां से आया, पता लगाओ, पता चला कि गाय है जो ब्रह्मा जी ने दिया, कामधेनु है, दिव्य गाय है, स्वर्ग से आया हुआ है और उस गाय ने ये सब कुछ दिया। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों से, कहा कि बस ये गाय को तेज महिष्मति न्यूनम इसको उठाओ यहां से महिष्मतिपुरी सवत्साम बछड़ों के साथ में ले चलो, बछड़ा भी लगा हुआ था, बछड़े के साथ में गाय को महिष्मतिपुरी ले चलो, लो तुम खाए पी चले जाना चाहिए था, अब उनके धन पर इनकी आसक्ति हो गया, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते पराय स्त्री को माँ बहन की तरह देखना चाहिए, पराय धन संपत्ति को पत्थर की तरह देखना चाहिए, मिट्टी का कर समझना चाहिए, आसक्ति नहीं लगाना चाहिए। परंतु आज अपना दूसरा हो गया, दोनों दूसरा हो गया, दोनों किसी को देखते माँ बहन को तो सबसे पहले गलत दृष्टि डालते हैं, पराये धन देखते तो चौंक उठते उसके पास क्यों है, कैसे आएगा हमारे पास, दशा है, इसलिए तो आज दुनिया में हाहाकार मच रहा है, जगह जगह तनाव है, क्यों है, भक्ति भजन नहीं करते, बस लूट पाट चोरीदारी में से फंसे हुए हैं। ऐसी दशा है दुनिया की आज, तो कहां शांति आएगी? और गो माता सब कतल खाने में जा रही है। एक सेकंड, तात्पर्य मिश्रा प्रभुपाद जी गो की रक्षण करने के लिए कहते, सात माताएं होती है, जन्म देने वाली मैया, एक पालने वाली मैया, गुरु की पत्नी मैया, ब्राह्मण की पत्नी माता होती है, राजा की पत्नी माता होता है, और एक गो माता है। गाय तो सबसे पहले माता होती है, तो आज गाय का कोई सुरक्षा नहीं किया जाता। प्रत्येक दिन 10,000 गाय यहां पर कटी जाती है, और गाय गोविंद को इतना प्रिय है ठाकुर जी को, हमने पहले कहा सब भगवान के दूसरा स्वरूप है। जानते हैं वृंदावन में हमारे कन्हैया जब स्नान करते थे यमुना जी में, स्नान करने के उपरांत अपनी प्यारी मैया को नहीं देखते थे, जबकि माँ यशोदा उनके लिए बहुत प्यारे थे। सबसे पहले उठ करके गाय का दर्शन करने जाते थे, और गाय के दर्शन करने के उपरांत किससे मिलते थे। इसलिए तो कहा गया है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। गाय और ब्राह्मण ये दोनों गोविंद को प्रिय है। ब्राह्मण भगवान के मुख है, ब्राह्मण वैष्णव को खिला दिया जाता है तो गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। गाय तो प्राण है, जितने लोगों ने रिझाया भगवान को सबने गाय को आगे किया। इंद्र ने एक ऐसा गलती किया हमारे गोविंद को 7 दिन तक गिरिराज पर्वत धारण करके रखना पड़ा, जिसमें दुनिया भ्रम में पड़ा हुआ है। ब्रजवासी तो कहने लगे अरे यह सप्ताह यनु बालई करणी के नलीलया सकृत विभ्रम गिरिवरम पुष्करम वज्राडीव। इस 7 वर्ष की बालक इतनी बड़ी गिरिराज को कैसे अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक धारण कर लिया। जैसे पुष्कर से किसी गजराज एक कमल के पुष्प अपने सुंड पर उखाड़ लेता है, कोई मेहनत नहीं लगता। ठाकुर तो ये 7 दिन तक चला, 7वें दिन के अंत में वो इंद्र का सारे शक्ति छिन होने लगा, और इंद्र भागते भागते दिखाई पड़ा ठाकुर जी के सामने। दुनिया में भैया सबने अपना शक्ति लगा देते अपने इंद्र तृप्ति के लिए, जब सब ओर से हार जाता है तो अंत में मुरझा हुआ फूल गिरिधारी के पास लाता है अपने आप को। प्रभु मैं तो हार गया, अब तेरे शरण में। भैया पहले क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई थी, पहले आ जाता कल्याण हो जाता। दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति सबने भैया यही दशा है, दुनिया वालों से सहारा मांगते, कोई दिक्कत होता तो पड़ोसी के पास दौड़ते, अपने से बड़ों के पास। अरे राजा अधिराज वृंदावन में बिहारी शिष्य राधा गिरिधर के पास क्यों नहीं दौड़ते? एक बार गिरिधारी के पास अगर आ जाओगे तो ठाकुर जी ने कहा अभयम सर्वदा तस्मई, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अभय दान कर दूंगा, हमेशा के लिए अभय दान कर दूंगा, आओ तो एक बार हमारे शरण में। शरण में आने की तैयारी नहीं तो गाय का रक्षा होनी चाहिए जगह जगह। आज गाय सब कतल खाने में जा रहा है। भैया जब तक दुनिया में गाय का रक्षा नहीं होगा, गाय पूरी तरह से चारों ओर से सुरक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक आप कितना भी आनंद की खोज कीजिए, कितना बढ़िया बढ़िया रोड बनाओ, कितना गाड़ी घोड़ा प्लेन बनाओ, कितना धन वैभव कमाओ, कितना सुंदर पत्नियों से ब्याह करो, कितना पुत्र पत्नी लड़को बच्चिया पैदा करो, कितना धन अर्जन करो, सुख जिंदगी में नहीं अनुभव कर सकते। सबसे पहले हमारे पास अगर शक्ति है, शरीर है, तो गो माता की सेवा करने पधारो गौशाला में, या गो माता को घर पर रखो, गो माता के वहां अपना धन को दान में दो। गो सुरक्षा, अगर गाय को सुरक्षा मिल गया तब तो हम सब परमानंद में रहेंगे। गाय प्रसन्न हो गए तो गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। तब ऐसे इंद्र ने जब गलती किया, 7 दिन के बाद वो जब आया तो आगे आगे सुरभि को लेकर के आया था, गाय को लेकर के आया था। गाय भगवान को प्रिय है, गाय को देख कर भगवान ने आधा ठंडा हो गए। फिर इंद्र ने बड़ा स्तुति इत्यादि किया, वो सुरभि कुंड आज गिरिराज के पास है। ऐसे ही गोविंद कुंड भी और एक है, वो एक बार ब्रह्मा जी ने भी ऐसे गलती किया था, वो भी गाय को आगे लेके आए थे। गाय भगवान को प्राण से अधिक प्रिय है, पता है? एक साफ बात सुन लिए, सुनने में कठोर लगेगा सबको, हम हिंदू लोग ही इसके मूल कारण है गाय क्यों कत्ल खाने में जाते हैं। हम हिंदू ही सबसे पहले मूल कारण है। सिनातन के हम तो हिंदू है, क्या हिंदू है भैया, ऐसे हिंदू क्या फायदा है? अपने घरों में भैंस रखते हैं भैया, मीरा रोड में कितनी गौशाला है, कितनी भैंस के ताबला जाके देखिए तो जरा, साफ सी बात है कितनी भैंस के ताबला देख लीजिए, कहां पर गाय पाले जा रहे हैं। गाय तो 1 लीटर दूध देगा, भैंस देगी बाल्टी वाल्टी, तो पियो भैंस बुद्धि का बनो, मोटे बुद्धि हो गया इसमें दुनिया वालों का। घर पर गाय नहीं और भैंस पले जा रहे हैं तो बताओ गाय कहां जाएगी। गाय कितनी निरादर होती है हमारे इस मनुष्य योनि के अंदर, हम इतनी निरादर करते हैं हिंदू होकर के, तो गाय कतल खाना नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। आज गो माताओं को कैसे मारी जा रही है जानते हैं, जिंदा उसके खाले उखड़ा जाता है, जिंदा उसके सिंह उखाड़ते हैं, जिंदा उसकी यहाँ पे रड़ डाल करके उसकी जीवा काट करके निकालते, जिंदा उसे उल्टा उसके पीछे का पैर टांग करके गर्दन पर चाकू मार के खून निकालते, जिंदा जिंदा जानते हैं। और अंत में जो मांस निकलता वो होटल में मीट के रूप में मिलता है, खाते हैं सब, और खाले से पस वेल्ट इत्यादि चमड़ी के जूता ब्याज इत्यादि सब बनता है। चर्बी से कई प्रकार के दवाइयां बनाते हैं और कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, साबुन पेस्ट इत्यादि से, रक्त से लिपस्टिक बनाते हैं, तो ये सब चीज बनती है। कैडबरी चॉकलेट बनता है चर्बी से, तो ये सब आज गोमाता की कहीं निरादर सब निरादर होने के कारण गोमाता सब कसाई घर में चले जा रहे हैं। और जब तक गोमाता को सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक शांति संसार में नहीं है। कल सबने सुना कमलोचन प्रभु जी ने कहा गाय आज दुनिया में बीमारी क्यों, जहां गए हैं आप किसी किसी आश्रम में जहां पर गौशाला है, गए हैं जोधपुर गए हैं जहां 3-4 लाख गाय हैं, जोधपुर में राजस्थान के पास वहां गौशाला है, आप वहां पर जाएंगे। हम हरियाणा में रहते हैं, वहां पे भी भारत जी ये सब हम सब जाते थे रोज गौशाला में, भरत लोग सवेरे सवेरे सेवा करने के लिए सब जाते हैं, तो वहां पे हमने देखा कितने गाय बीमारी है। जानते हैं गाय बीमारी क्यों है, गाय भैया इतना शुद्ध है वो बीमारी कभी नहीं होता, कभी नहीं होती बीमारी वो, फिर भी गाय बीमारी क्यों होते जानते हैं, आपकी हमारी जो दुख है उसे गाय हरती है, क्योंकि माँ है वो माँ। जैसे बच्चा जब पिशाब कर देता है तो मैया उसे उठा करके सूखे में सुला देती, स्वयं गिल्ली में सो जाती, ऐसे बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे आपकी हमारी दुख जो लोग गौशाला में जाते हैं गाय का दर्शन करते तो गोमाता इतनी प्रसन्न हो जाती है, कहती तेरे अंदर कोई दुख तेरे को नहीं मिलना चाहिए, दुख मैं ले लेता हूं तो अपने ऊपर ले लेती। इसीलिए गोमाता सब बीमार है। ये बहुत बड़े संत से मैंने ये बात सुना था, बड़े सिद्ध संत के मुखारविंद से हमने बात सुना है, पद्म पुराण से किसी श्लोक का उदाहरण दे रहे ये बात पर। गाय आज बीमारी इस कारण है और किसी कारण नहीं, आपकी हमारी दुख को लेकर। परंतु आज गाय का कहीं सेवा नहीं होता। आज गाय के नाम पर कुछ लोग गाय तो रखे हैं घर पर, परंतु गाय के नाम पर दर्शियों को रखे हैं, वो गाय नहीं है, वो तो जंगली पशु है आज गाय, क्योंकि वो भी ज्यादा भैंस जैसा दूध देती है, दर्शियों को रखा है। गाय का पहचान होता है, पुराण खोलिए पद्म पुराण आपको मिलेगा, गाय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आजकल के कुछ ऐसे गाय रखे महाराज सिंह ही नहीं है, तो देसी गाय जो होते हैं हमारे जिनकी सेवा करने की कही जा रही है, जिसको चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए कहा जा रहा है, उसके सिंह होता है और गर्दन पर बड़े लंबे सा ढाल होता है और पीठ पर चूल होता है, लंबे होते हैं और एक कई लक्षण उसके अंदर होता है। आजकल की गायों का इधर ढाल नहीं होता, ऊंट की तरह दिखते महाराज, पीछे चूल नहीं होता, सिंह भी नहीं होता, ये गाय नहीं है, ये दर्शी है, इनको सब पाले रखे हैं और कहते ना हम कौन सेवा करते, पहचानो अपने आप को क्या कर रहे हो, जानो अच्छी सेवा कर रहे हो, वो सेवा नहीं। तो हमारी और आपकी कमी के कारण गो माता आज कसाई घर पर जाता है। जानते हैं एक बार गो माता को दुख देने से, कष्ट पहुंचाने से, कत्ल करने से कितनी पाप लगता है, उतना पाप लगता क्या इसकी वर्णन किया जाए भैया। गोविंद को गाली दे दोगे चलेगा, गो माता को गाली देने से नहीं चलेगा भैया, गोविंद नाराज हो जाते, इतना प्रिय है गो माता भगवान के लिए। जनक महाराज को नरक दर्शन करना पड़ा था, जनक महाराज विदेही कहा जाता है, विदेही मतलब देह से हमेशा परे रहते थे, आप हम देह में रहे हैं, आप बैठे हो, किसको अगर मच्छर काटेगा तो सर मिलेंगे, किसको टांगे दर्द, वो उनको ऐसा कोई दशा नहीं था, जब व्यासदेव जी कथा कहते तो जनक महाराज बैठे रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो देह से परे होकर के आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होकर के श्रवण करते थे, सेवा करते थे, वो देह ही रहते थे, देह से हमेशा बाहर ही रहते थे, देह में रहते हुए भी, इसीलिए उन्हें विदेही कहा जाता है, जानकी जी को विदेही नंदिनी कही जाती है सीता जी को। तो ऐसे जनक जी को भी नरक जाना पड़ा था, सबने कथा सुना होगा, जनक जी नरक क्यों गए थे, एक बार जीवन में एक गलती हुआ था, उन्होंने क्या किए थे, अपने राज्य में एक बूढ़ी गाय, एक वृद्ध गाय गो माता एक तालाब में पानी पीने के लिए जा रही थी, तो जनक महाराज के मन में आया तालाब में बहुत कीच है, अगर ये पानी पीने जाएगा तो वहां पर ये फंस न जाए कहीं कीच में बिचारी, तो दया की वश करुणावश उन्होंने उसे हटा लिए और गाय वहां से पानी नहीं पी, चली गई बिचारी जनक महाराज के हटाने पर, चाहिए था उन्हें कि वहां से उन्हें हटाया तो दूर में आकर के बाल्टी में पतीले में उन्हें पानी दे देना चाहिए था, ऐसा नहीं किया जनक जी ने, इस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो गाय आगे चली गई कहीं और जाकर के पानी पी, इतनी सी गलती के कारण महाराज जनक को पाप लग गया। देखिए आप, जनक महाराज को भी छोड़ा नहीं गया महाराज, गाय की बस गाय के मंगल के लिए उन्होंने हटाया, परंतु गाय पानी क्यों नहीं पिया, इस कारण उनको नरक दर्शन करना पड़ा, पूछे जाके हम नरक क्यों आए, पल भर के लिए उनको नरक के मार्ग से ले लिया गया, और उन्होंने कहा, उनसे कहा गया, भैया तुमने एक बार गाय को पानी पीने से रोका था, अब आप विचार कीजिए, जिनके घरों पर खूंटे में गाय बंधे हुए हैं, जिनको पानी नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, वो कहां जाएंगे, जनक जी को तो दर्शन करना पड़ा, वो क्या करेंगे जाके नरक में, कैसा दंड उनके लिए होगा, विचार कीजिए, जो सूखे खूंटे पर अपने घर में गाय को बांध कर गर्व करके गाय रखे हैं, अपने घर में खाना बनता तो सबसे पहले गो माता के लिए निकलना चाहिए खाना, इन लोगों के अंदर आज तो अज्ञान फैला हुआ है, समझते कि पशु है, पशु नहीं भैया तेरे माँ है, पशु नहीं है ये, पशु समझते रहेंगे, जब तक पशु समझता रहेगा प्राणी जीव, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा, गो माता हमारी माँ है। तो ऐसे सदन कसाई की भी कथा आपने सुना, सदन कसाई ये हरिद्वार में रहते थे, पूर्व जन्म की घटना है, जब ये दूसरे जन्म में सदन के रूप में आए तो कसाई परिवार में जन्म लिए थे और इनके दोनों हाथ काट दिया गया था, पद्म पुराण की कथा है, दोनों हाथ उनकी कट गया था जब जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे, तो क्यों कटा था जानते हैं, जगन्नाथ जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरा दोनों हाथ क्यों कट गया, जगन्नाथ जी ने कहा कि बेटा तुमने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे तुम, और तुम हरिद्वार में बैठकर के पीपल के नीचे पूजा मंत्र पाठ किया करता था, और एक बार कसाई के वहां से गाय छूट करके चला जा रहा था, कसाई गाय के पीछा करते हुए आया, तुमसे पूछा कि तुमने कोई गाय को जाते हुए देखा, तुमने जवान तो नहीं चलाया, हाथों से इशारा कर दिया, हाँ हाँ इस रास्ते में गया, कसाई गया आगे उस गाय को पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया, इसका पाप तुम्हें लगा कि इस कारण तुम्हारे दोनों हाथ कट गया, परंतु हाथ तुम्हें वापिस मिला, इसीलिए मिला क्योंकि तुम मेरा भक्ति करते हो, इसलिए वापिस। तो गाय के प्रति जो दुर्व्यवहार आज समाज का हो रहा है, ये बहुत खतरनाक स्थिति में जीव को लेकर डालेगा एक दिन। जब तक गाय और संतों का सम्मान नहीं होगा दुनिया में, तब तक दुनिया में सुख शांति नहीं आ सकता। जानते आज ये धरती क्यों टिका हुआ है? ये धरती टिका इसलिए है, कहा गया है संत ना हो तो जर जातो संसार, अगर संत ना होते, ऐसे ऐसे परमहंस साधु ना होते, ये संसार कब से जल करके राख हो जाता। संतों के लिए संसार टिका हुआ है, संतों के लिए संसार टिका हुआ है, और साइट में रहकर ये लोग आनंद ले रहे हैं। संसार तो केवल संतों के लिए है, वैभव सुख तो संतों के लिए है, परंतु जो लोग अभक्त है वो भी आनंद लिए जा रहे हैं इसके, संतों के कारण नहीं समझते। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर को सेठ कहता पीछे बैठ करके ऐसी चला, तो ऐसी के ठंड की ठंडा हुआ केवल उसको सेठ को नहीं मिलता, ड्राइवर को भी मिलता। पहले तो ड्राइवर को लगता होगा ऐसी, ड्राइवर को ही मिलता, साथ में सेठ को भी मिलता, परंतु सेठ के लिए ही ऐसी चला, परंतु दोनों को ठंडा मिला। ऐसे संतों के लिए आज संसार है, परमहंसों के लिए संसार भगवान ने टीका रखा, नहीं तो अगर संत न होते कब से जल करके संसार राख हो जाता। चंडीदास जी के वाक्य, जिनके वाक्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे बंगाल में हुए, उन्हीं की वाक्य हुए। तो संत और गाय की सुरक्षा जब तक नहीं होगा, तब तक दुनिया में कोई शांति नहीं आ सकता। तो यहां पर वर्णन करते हैं, जब राजा ने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि तेज महिष्मति न्यूनम सवत्सम, एक गाय को और बछड़े के साथ में महिष्मति पूरी ले चलो, हमारे राज्य में ले चलो, तो हुआ क्या, सेना समेत जितने भी सब सेना उनके आए हुए थे, राजा के आज्ञा पाते ही गाय को पकड़ करके महेश्वतीपुरी ले गए, अपने राज्य में ले गए। अब उस समय गो माता की दशा क्या थी देखी, क्रंदंती बलात्, सबने सुना गो माता रो रही थी। भैया कसाईयों के हाथों में जब जाते हैं गो माता, तब वो बहुत दुख करती है, उसे इस बात की दुख होती है, अपने मरने की परवाह नहीं होता। जानते हैं जो माँ होती है अपने बच्चे को अगर दिक्कत होता है तो स्वयं मच्छरों में बैठी रहती है अस्पतालों में, हमने देखा, हमारे भैया बैठे होंगे। एक बार हमारे भैया को ऐसी बुखार आया था छोटे थे, तो हमारी माँ मच्छरों में बैठी हुई थी अस्पतालों में, ऐसी मच्छर, ऐसी फालतू वाले अस्पताल था, कोई उपाय नहीं था कहीं ले जाने का। बच्चों के प्रति माँ की ये प्रेम होता है, पहले अपने आप को दुख में डाल देगी और बस बच्चा मेरा सुख रहना चाहिए। गोमाता जाते समय कसाई घर क्यों रोती है जानते हैं? इसीलिए रोती है, अरे अरे ये कितना मूर्ख है मेरा संतान, कितना मूर्ख है ये मनुष्य, मुझे दुख देते हैं, इनको पता नहीं है प्रकृति के विधान है, मुझे अगर दुख देंगे तो इनके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो अपने दुख का सुमिरन करके जीव कैसे सुखी रहे, इसका सुमिरन करते हुए वो रोती रहती है, बिनकती रहती है, मरने की परवाह उसे नहीं है। ये गो माता की स्वभाव है भैया, क्या कहा जाए गो माता के ऊपर। अरे वो तो भगवान का दूसरा स्वरूप है, उनका जितना भी गुणगान करो उतना कम है भैया। तो ऐसे गो माता को जब ले करके ये जा रहे थे तो क्रंदंती बलात, तो आज के हमारे श्लोक यहीं से चालू होता, 27 से 30, चार श्लोक के अंदर संक्षिप्त में सुनिए। अतः राजनी निर्यते राम आश्रम आगत, जब ये बात श्रुत्वा तत तस्य दौरात्म्य, जब राम ने सुना, परशुराम जी ने सुना, परशुराम जी के नाम है राम, राम राम नाम है, परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि परशु पकड़े रहते थे। जब उनके पिताजी की वध हो गया जमदाग्नि के, तो उनकी माँ 21 बार छाती पीट पीट करके रोई थी, इसलिए 21 बार दुनिया में क्षत्रिय शून्य कर दिए और परशु हाथ में पकड़े रहे, इसलिए परशुराम नाम पड़ गया है। तो उनके नाम राम, तो श्रुत्वा तत्स्य दौरात्म्य, जब उन्होंने सुना, परशुराम आश्रम पर नहीं थे जब जब ये कार्तवीर्य अर्जुन ने ये नखरा किया अपने पिताजी के ऊपर, जब दुर्व्यवहार किया, गाय को चुरा करके ले गया, जबरदस्त बलात् जब ले गया महिष्मती न्यूनम अपने महिष्मतीपुरी में, तब क्या हुआ, परशुराम जी घर पर नहीं थे, इनके और 5 भाई थे परशुराम जी के, जमदाग्नि के ऐसे पुत्र थे, तो परशुराम जी बन में कहीं थे, तो परशुराम जी को किसी ने जाकर के बताया, अरे राम राम राम, तुम्हारे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए गाय चुरा करके उस महिष्मती के राजा ने ले गया। जैसे श्रृंगी शैलेंद्र ऋषि के गले पर जब सर्प डाला गया, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परंतु श्रृंगी वहां पर थे नहीं, श्रृंगी तो कौशिक नदी में स्नान कर रहे थे, किसी बच्चों ने जा करके कहा तुम्हारे पिताजी के गले पर मृतक सर्प डाला, इसीलिए वो तुरंत उसको गुस्सा आ गया, वही कौशिक नदी से जल उठाया, सूर्य को समर्पण किया, कहा कि आज से 7वें दिन उसे दक्षक नामक सर्प दर्शन करेगा, मर जाएगा जिसने मेरे पिताजी के गले पर मृतक सर्प डाला। तो ऐसे परशुराम जी भी घर पर नहीं थे, आश्रम पर नहीं थे, तो परशुराम जी को जब ये सुनने की अवसर प्राप्त हुआ, श्रुत्वा तत्तस्य, जब उन्होंने सुना, क्या सुना, आश्रम आगत, क्या सुना उन्होंने, घोरम आदाय सॉरी अन्वधाप दुर्मसो मृगेंद्र, जब उन्होंने सुना कि मेरे आश्रम पर, मेरे पिताजी के आश्रम पर राजा आया था और उसकी सत्कार इत्यादि हुआ, राजा जाते समय मेरे पिताजी को तिरस्कार करते हुए धमकी दे करके हमारे कामधेनु गाय को चुरा लिया, इतना जब सुने परशुराम जी, अब वो तो महाराज परशुराम जी सीधे बाहर हो गए, ऐसे तो बाहर ही रहते थे पहले, आवाज मृग खाल पहन करके रहते थे, नील मृग की खाल पहनते थे, अब इतने गुस्से हो गए परशुराम जी, सीधे तिल मिलाते हुए आए, कहते हैं अथ राजनी निर्यते, तब राजा चला गया था आश्रम से, राम आश्रम आगत, तब परशुराम आश्रम पर आए, श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यम सुक्रोध सुक्रोध इव आहत, सुक्रोध सुक्रोध का अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे परशुराम जी ने जब संवाद सुना कि हमारे गाय को चुरा लिया उस बदमाश ने, मेरे पिता के अपमान किया, अब सुक्रोध इव आहत, ऐसे हो गए परशुराम जी जैसे किसी सर्प को, देखिए कैसा उदाहरण दिया जा रहा है, किसी जहरीला सर्प को किसी ने पीट दिया हो, उसके डंक तोड़ दिया हो, उसके गर्दन पर प्रहार किया हो, और उस नाग सांप भयंकर गर्जना करता हो, और विशाल सर्पराज हो भी ऊपर से, और ऐसे सर्प जब आहत रहता है तो इधर उधर बस विचरण करता है कि मैं किसको दसूं, किसके ऊपर अपना विष का बार करूं, कभी आहत सर्प को देखे हैं आपने? हम गांव में रहा है, देखा है आहत सर्प को, जिस सर्प को आघात पहुंचाया जाता है, मारा जाता है, वो सर्प कैसे होते, बहुत खतरनाक, वो वास ढूंढते रहते कि हम किसको दसे, बहुत गुस्से में हो जाते। तो ऐसे परशुराम जी तो उरात्मीय चुक्रोधा इव आहता, एक दस एक सर्प की तरह, चोट खाने वाले सर्प की तरह ये गुस्से में आ गए, चुप क्रोध अत्यधिक क्रोध में हो गए, और क्रोध में करके क्या किया परशुराम जी ने, आगे वो कहते हैं घोरम आदाय परशुरुम परशुम सत्रुनम वर्तमह काम कामुरुकम को तुरंत और विचार नहीं किए, कुछ सोचे नहीं, तुरंत उन्होंने अपने परशु को उठा लिया। और सत्रुनम जिसमें बाण रखते हैं तुणीर उसको उठा लिया। और वर्तमह बर्म जो ढाल होता है युद्ध करते समय बाएं हाथ में रखते हैं ये ले लिए, और कामुरकम साथ साथ में धनुष ले लिए, एक साथ में इतने ले गए कि आज मैं तो उस सहस्त्र बाहु को कत्ल करके आता हूं जिसने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। अगर भैया भगवान के अवतार धरती में क्यों होता है, धरती में भगवान तब आते हैं, कहते परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृत्यम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत। जब धर्म का लाश होने लगता है, गोमाता को कष्ट पहुंचता है, संतों को लोग तिरस्कार करते हैं, गालियां देते हैं, और धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म का वृद्धि होने लगता है, तब हमारे गोविंद संभवामी युगे युगे हर एक युग युग में प्रकट होते। तो परशुराम जी का भी प्रकट का यही कारण था, उन्होंने देखा कि इतने बड़े ब्राह्मण का ऋषि का उन्होंने तिरस्कार किया, तो ऐसे नालायक को कोई संसार में रहने की आवश्यकता नहीं। चल पड़े सत्रिनम वर्मह कारमुकम, उन्होंने अपने धनुष बाण और ढाल तुणीर परसु उठा करके चल पड़े। अन्व धावत दुर्मसो मृगेंद्र इव युथपम, कैसा शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, आपको खाली हम अर्थ सुनाते सुनाते जा रहे हैं, आदेश हो गया वन करने के। चले अन्व धावत, वो आगे आगे जा रहा था, अब ये पहुंचा नहीं था महेश्वरतीपुरी में, गाय चोरी करके जा रहा था लेकर के अपने सैनिकों के साथ। अन्व धावत उनके पीछे पीछे ये चल पड़े। परशुराम जी के गुस्सा जानते कितना है, परशुराम जी कुछ सोच विचार नहीं करते, इतने खतरनाक है परशुराम जी। भैया कभी सोच विचार, उनके माँ एक बार, उनके माँ का नाम रेणुका है, एक बार उनके पति रेणुका जी के पति जमदाग जी ने परशुराम जी के पिताजी ने रेणुका जी को कहा कि कुछ जल लेकर के आओ, जल्दी हमें पूजा में लगानी है। तो रेणुका जी गई थी जल लेने के लिए, सरोवर से जब जल लेने गई तब उस समय स्वर्ग से चित्ररथ आए हुए थे, दिव्य रथ पर बैठ करके आए थे। रेणुका तो यही का थी, भैया आप जब आकाश में देखेंगे किसी मनुष्य को दिव्य सिंहासन पर उड़ते हुए तो देखते रहेंगे कि नहीं, आप देखेंगे ना। तो वो बिचारी देखने लगी, थोड़ी देर देखी तो विलंब हो गया कि स्वर्ग से चित्ररथ आए हुए हैं, विलंब हो गई। और उतने में ऋषि को यहां बड़ा गुस्सा आया, जमदाग्नि को, जब पानी लेकर के आई आश्रम पर डरती हुई आ रही थी कि मैंने विलंब कर दी। अब आश्रम पर आई तो जमदाग्नि ने तुरंत अपने पुत्र से कहा इस पापिनी के वध कर दो, ऋषियों में थोड़ी कमी भी है, इस पापिनी के वध कर दो। तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम नहीं वध करेंगे मां के, मातृभक्ति था नहीं की। तो परशुराम जी को उन्होंने कहा बेटा ये चारों नालायकों का भी वध करो और तेरे मां का भी, इन्होंने हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया। तो परशुराम जी को पास जबान छूटते सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दिए, चारों भाइयों को भी कदल, मां को भी। परशुराम जी खैर दुष्दृष्टि न कीजिए भगवान के, इसमें ये दिव्य लीला है। परशुराम जी जानते थे कि हमारे पिताजी के पास इतना शक्ति है, प्रसन्न होकर के कहेंगे कि आशीर्वाद मांगो, और यही हुआ, वो प्रसन्न हो गए। बेटा तुमने हमारा आज्ञा का पालन किया, जवान छूटते ही तुमने परशु चलाया, इसलिए मांगो मांगो क्या चाहिए तुम्हें, कुछ बर मांगो। उन्होंने कहा कि पिताजी हमें बर दो, मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरी भाई भी चारों जीवित हो जाए, और गर्दन पर कटने जलने की निशानी ना हो, कटने की निशानी भी ना हो, जिंदगी भर और उन्हें याद भी ना रहे कि हमने उन्हें मारा था। परशुराम सोचने लगे ये वरदान मांगना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में उन्हें याद ना हो, क्योंकि आजकल के भाई लोगों को पता है भाई भाइयों में क्या होता है। अगर उन्हें बाद में कभी पता चला हमारे छोटे भाइयों को कि परशुराम ने हमारा गर्दन काटा था, तो एक दिन कहेंगे फिर परशुराम हुआ तो उन्हें हमें मारा था, तो मौका दे करके परशुराम के गले पर भी चला देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमको याद ही ना रहे, तो यही हुआ, किसी को पता नहीं चला उन चारों को पांचों को कि परशुराम ने मारा था। तब ऐसे क्रोध में अन्न धावक दुर्मसो मृगेंद्र इव युत्पम, वो ऐसे दौड़ने लगे जैसे किसी गजराज को झपट मारने के लिए, गजराज को अपने जबड़ में लेने के लिए कोई सिंह जाता है। देखें ऐसा दशा, तो लोग टेलीविजन देखते हैं, डिस्कवरी सब देखते हैं, टेलीविजन डिस्कवरी में देखे होंगे या देखते सब है, मना मत कीजिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए मेरा। तो डिस्कवरी में आप सब देखे होंगे, जब गजराज चलता है तो किसी गजराज को सिंह कैसे झपट मारते हैं, तो ऐसे मानो किसी गजराज को मृगेंद्र इव युथपम, हाथी को जैसे झपेटने के लिए जाता सिंह, तो हाथी कितनी बड़ा होता है, सिंह कितना छोटा होता है, परंतु हाथी से सिंह का बल ज्यादा होता है, तो सिंह किस टेक्निक से इतना बड़ा गजराज को पकड़े, गजराज धराशायी हो जाए, तो उस टेक्निक से बड़े आज्ञा बड़े दुर्मस हो बड़े क्रोधित होकर के परशुराम जी अन्नधावत उस कार्तवीर्य के पीछे पीछे भस्मतिपुरी की ओर जाने लगे। और जब गए तमापतंतम भृगुवरीय मोजसा कहते भृगुवंशी, परशुराम जी जब वहां पर पहुंचे एड़े ओजसा धनुर्धरम वाण अंबरम अर्क धनिधि, उन्होंने अपना परशु बाण तुनीर ये सब अस्त्र शस्त्र लेकर के वहां पर पहुंचे, अस्त्र शस्त्र लेकर जब वहां पर पहुंचे, अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर, ये वही होगा। जब वहां पर पहुंचे तब दूर से परशुराम ने सॉरी इन्होंने देखा, किसने कार्तवीर्य अर्जुन ने, युतम जटाधिर ददृशो पुरी विसन, उन्होंने देखा कि हमारे पुरी की ओर महेश्वती पुरी की ओर परशुराम स जटाम जटा वाले थे वो परशुराम जी। उनकी थोड़ी सी रूप का वर्णन कर देते हैं, अब समय नहीं है, यहाँ पर सुन लीजिए। जटा वाले थे वो, तो वो जब आए तो उन्होंने ददृशो उन्होंने देखा, अब जब देखा तो इसको क्या करना चाहिए था, साक्षात गोविंद को देख रहा लड़ने के लिए चल पड़ा, यही तो राक्षस प्रवृत्ति। जब भगवान वराहदेव सागर से पृथ्वी को उधार कर रहे थे तब भी हिरण्यक्ष ने देखा, परंतु देखकर के उन्होंने शरण नहीं गया, ललकारा रे रे चोर विष्णु, तू ये पृथ्वी को क्यों ले जा रहा है, ये पृथ्वी तो हम रसातल वासियों को ब्रह्मा जी ने दिया, झूठ बोल रहा था, झूठा कहेंगे। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ पता है तुम्हें ब्रह्मा जी ने दिया है, तब कहा कि अगर तुझे पृथ्वी को ले जाना है तो हमसे युद्ध करके ले जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो गया। गोविंद ने कहा, बराह देवी जी ने कहा, हाँ भैया तुम्हारे जिससे वीरों का ललकार तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, और आए वो युद्ध हुआ, बराह देव ने फाड़ दिया, उन्हें खत्म कर दिया। तो वैसे ये जब देखा तो ये क्या किया, अब इस श्लोक की ओर देखिए, अब उन्होंने क्या किया, अशोदयत हस्ती रथ अश्व, उन्होंने क्या किया भेजा, देखिए शरण तो नहीं गया, तुरंत अपने सैनिकों का आदेश दे दिया, पति भी गदा अस्तिवाण और अतघ्नि शक्ति ही, ऐसे ऐसे अस्त्रों को उन्होंने अस्त्र को लेकर उनके सैनिक आए, और हाथी रथ अक्षोहिणी सप्तदश, कुल मिलाकर के कहते हैं 17 अक्षोहिणी सेना उन्होंने भेजा। 17 अक्षोहिणी सेना कितने होते हैं जानते हैं, क्या मैं लिखा हूं, 37,17,900 सैनिक होते हैं, अब गणना एक एक करने के समय नहीं है, 37,17,900 सैनिक होते हैं, रथ वाले, घुड़सवार वाले, हाथी के ऊपर, पैदल, इतने लोगों को उन्होंने भेजा। और जब भेजा परशुराम जी को मारने के लिए, रोकने के लिए, परंतु हुआ क्या, परशुराम जी को कोई रोक नहीं सका, आखिर भगवान है। तो स्ता राम एको भगवान अशु, भगवान अशुदयत, भगवान श्री राम ने, भगवान परशुराम जी ने एक हो, केवल अकेले, परशुराम जी के साथ कोई नहीं था, 37,00,000 सेनाओं को अकेले ही निपात कर दिए। इसीलिए तो भगवान शब्द आया। अब भगवान शब्द की व्याख्या सबने सुना है, फिर लंबा हो जाएगा। खैर, भगवान की अर्थ यह समझ लीजिए, भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञानम वैराग्यश्चैव सणाम भवति गणा। इसमें से एक ऐश्वर्य है संपूर्ण बलवान। हमारे कन्हैया 6 दिन के थे, पुतना आई थी, थनों में दूध मिला, दूध में जहर मिला करके पी ला करके सर पार करा देता हूँ। अब ऐसे हुआ, भगवान ने अपने होठों से उसके थनों को दबा दिए, उमरा चिकने लगी, मुंच 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 छोड़ने लगा, बहुत पी लिया, अब पिलाने आई तो पिला दूध मैया, अब कहाँ जाएगी, मुंच मुंच करने लगी, भगवान ने छोड़ा नहीं, जाकर अपने होठों से दबा लिया। पुतना खैचरी जो हजार हजार लाखों लाखों बच्चों को मारती थी घूम घूम करके, पुतना के नाम सुनती देवता कांपते थे, उस पुतना को गोविंद ने होठों से दबा दिया, मर गई। ये भगवान है। तो परशुराम जी सराम, ये भगवान है। तो भगवान परशुराम जी ने इस प्रकार पूरी सेनाओं का तो कथा यही विनाम कर देते हैं। तंत्रभागवतम की शिशुराधाधारी भगवान की, शिश जगन्नाथ बलदेव सुभद्राज की, सुगौरताज भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, वंशा कलपति भैया, कोई गलती वलती हो गई अभी तो हम लोग क्षमा कर देंगे इस पापी को। हरे कृष्ण।